लगा कहूँ क्या
वो कुत्ता हर तो एक मिनट
दवाई हूँ ना
केवल कहाँ है इसके
रुको रुको
कहाँ है केवल कहाँ इसके इसको भी लगा
दे रही
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गौरवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर् भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामनि गौरात्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सच्चिदानंद है टेढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान वृंदावन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर सायंकाल के चार दिवसीय परम हंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी भागवत के कीर्तन आचार्य नवदा भक्ति में की प्रार्थना जो उन्होंने दूसरे स्कंद श्री भागवत के चौथे स्कंद में मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना की है, उसके रसास्वादन करने के लिए आप सब भक्त महानुभव पधारे, आप सबका स्वागत है। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से परीक्षत के समीप भागवत सुनाने के लिए पधारे थे। परीक्षित बुलाने नहीं गया था उनको, इसलिए श्री प्रभुपाद ने उधर तात्पर्य में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसका उदाहरण ये है कि कृष्ण की कृपा से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के मार्गदर्शन के लिए आए। परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को ढूंढने नहीं गए, प्रहलाद महाराज नारद को ढूंढने नहीं गए, भगवान ने प्रेरणा देकर भेजा। तो ये जो ब्रह्मांड ब्रह्मीते इसका ये उदाहरण है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वइच्छा से कृष्ण प्रेरणा से, और सुखदेव गोस्वामी जब उस सभा में आए हैं सुकताल पे, तो व्यासदेव नारद और हजारों ऋषि धरती के ऊपर रहने वाले भी और जन तपलोक में रहने वाले भी वहां पधारे हैं। उस कथा में और सुखदेव गोस्वामी को कोई पहचान नहीं रहा है सामान्य व्यक्ति, क्योंकि एक तो उनका जिसका वेशभूषा दिशाएं हैं, कपड़ा तो कुछ भी पहना नहीं है, दिशाएं जिसका वेश है 16 साल का बच्चा है, और लोग तो उसको पागल समझ रहे हैं। इसलिए एक सिद्धांत है, जब कोई दुनिया के लिए नालायक होता है तब भगवान के लायक होता है। ये एक सिद्धांत है, कल नहीं परसों इस कथा करेंगे। तो जब दुनिया के काम का कोई नहीं रहता है तब भगवान की सेवा के लिए वो उपयोग में आता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को सामान्य व्यक्ति तो नहीं पहचान सके, बच्चे और स्त्रियां, लेकिन वो ऋषि सब उठ के खड़े हो गए सवाए व्यास और नारद के, सब उठ के खड़े हो गए। परीक्षित महाराज उठ के खड़े हो गए उसको प्रणाम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये है, ब्राह्मण अपने अनुभव के ज्ञान से बड़ा होता है, क्षत्रिय अपने बाहुबल से बड़ा होता है, वैश्य अपने धन के शक्ति से बड़ा होता है, और शूद्र केवल उम्र से बड़ा होता है। कौन बड़ा है इसकी परिभाषा चारों वर्णों की अलग है। ऋषि सब तो बड़े थे उम्र में आयु में, लेकिन अनुभव के ज्ञान में सुखदेव गोस्वामी शिरोमणि थे। उनका जो अनुभव का ज्ञान था वो तो जन्म से ही, उनको संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो विकृत थे ही नहीं, इसको कहते हैं जन्म से ही वो ब्रह्मज्ञानी थे, जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठ थे। उनका संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपयुक्त संस्कार भी नहीं हुआ, विकार नहीं था, संस्कार की क्या जरूरत है? जब विकार होता है तो संस्कार करना पड़ता है। तो जिसको वो तो सिद्ध पुरुष थे अपने आप में, तो सब खड़े हो गए और उनको व्यास आसन दे दिया सबने, और सब नीचे बैठ के भागवत को स्मरण करके लिखने वाला व्यास देव, और व्यास देव को प्रेरणा देने वाला नारद, वो दोनों बैठ के भागवत सुन रहे थे सुखदेव से। ये इससे बहुत सुंदर कुछ, प्रभुपाद जी कभी बैठते थे तो अपने किसी शिष्य को कहते थे आप प्रवचन दे दो, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दो, और जब कोई उत्तर देता था और प्रभुपाद बहुत अच्छा, तो ये इतने सारे ऋषि उनके बीच में सुखदेव को ही परीक्षित के मार्गदर्शन के लिए चुना गया। इससे एक तो ये होता है जन्मे जन्मे गुरु से, भाई जो जिसका गुरु जन्म जन्म से वही गुरु उसको उपदेश देगा ना, बाकी सब बैठे थे वो भी सब गुरु के स्थान के थे, एक भी गुरु से कम नहीं था वहां जो बैठे हुए थे, उन सब के कई कई शिष्य थे, लेकिन जिसका जन्मे जन्मे गुरु से जो हम कहते हैं, जिसको जन्म जन्मांतर से वो भगवान के प्रेरणा से सुखदेव महाराज को ही ये सेवा, यहाँ एक समझना चाहिए, गुरु असल में सेविए भगवान है, उसका काम है सेवा करना। गुरु का काम है असल में बड़े से बड़ी सेवा। प्रभुपाद जी से जब एक बार पूछा गया कि पत्रकार ने कि आप बहुत बड़े इंग्लैंड के जॉर्ज हैरिसन जो पोप म्यूजिक का महाराजा है उसके गुरु, तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए शांत रहा और फिर कहा नहीं, मैं सबका सेवक हूं, मैं गुरु नहीं, मैं सबका सेवक हूं। जैसे पिता अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के अच्छा व्यक्ति बना के समाज को भगवान को अर्पण करता है, ऐसे गुरु अपने शिष्य को जैसे पत्थर को कारीगर काट काट के सुंदर मूर्ति बना के पूजा के लिए रखता है, ऐसे अच्छी तरह से उसको तराश कर मतलब उसके जीवन में चरित्र का निर्माण करके भक्ति का पोषण करके भगवान के चरणों में अर्पण करना है, ये गुरु की सेवा है। इसलिए नारद ऐसा पहला गुरु है जिसने भागवत में अपने शिष्य व्यास को प्रभु करके संबोधन किया है। प्रभु मतलब मैं सेवा कर, अथवा मैं हूं गुरु लेकिन आया हूं आप कहीं सेवा करने के लिए अथवा आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और ये परंपरा प्रभु की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों को प्रभु कहते थे और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को प्रभु कहना शुरू कर दिया। तो इससे बहुत बड़ा गंभीर भाव है कि गुरु सेवा का कार्य है, भगवान के प्रतिनिधि हैं और सेवा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? चतुर्विधा भगवत प्रसाद हो ये सिखाते हैं, चार प्रकार सॉरी शिष्य विग्रह आराधन नित्य नाना ये सिखा सेवा सिखाते हैं। सो ऐसे सुखदेव महाराज, वो जब परीक्षित महाराज ने सृष्टि लीला के विषय में भगवान की सृष्टि लीला, भगवान की सृष्टि करुणा है, जैसे सोए हुए बच्चे को माँ सुबह जगाती है ताकि पढ़ ले लिख ले बुद्धिमान बन जाए, ऐसे प्रलय काल में सोए हुए जीवों को भगवान जगाते हैं कि ये सत्कर्म करके भक्ति करके वापस अपने घर लौट आए। तो सृष्टि क्रिया सृष्टि लीला भगवान की करुणा है बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो सृष्टि लीला के विषय में प्रश्न परीक्षित महाराज का कि सृष्टि का क्रम क्या है, कैसे सृष्टि होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। प्रोसेस का मतलब उसका वो किस प्रकार से होती, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्रम से कैसे होती है, एक से दूसरे से तीसरी। और फिर भगवान आप स्वयं गुणों को धारण करते हैं कि आपके शक्तियों के द्वारा करते हैं, और फिर ये नाना प्रकार के रूप आकार प्रकार ये जो आप बनाते हैं ये किस माध्यम से, किसके द्वारा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो विशेष में सृष्टि का जब प्रश्न होता है तो उसमें दो प्रकार की सृष्टि है, सर्ग और विसर्ग। सर्ग भगवान विष्णु की सृष्टि है और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी मरीचि आदि दूसरे प्रजापति वो सृष्टि करते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं। तो सृष्टि के विषय में प्रश्न है तो प्रार्थना का पहला श्लोक उस सृष्टिकर्ता भगवान को प्रार्थना है। तो आइए, ये कल श्लोक हमने सिर्फ नमः शब्द को ही देखा था, आज नमः शब्द से आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आज हम चार श्लोक कर लेंगे, ये 12 श्लोक हैं तो चार चार श्लोक 3 दिन में हो जाएंगे। श्री शुक उवाच, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवः स्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुलप्य अनुपलक्ष्य वर्तमने। तो पहले तो नमः नमस्कार करता हूँ, किसको बोला, परम सही पुरुषाय, परम पुरुष भगवान को। परसई मतलब परम, परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। वो कैसे हैं भगवान, भूयसे। जो ये भूयसे शब्द है इसको श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भूयसे का मतलब पूर्ण, जैसे ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण मुदाच्य, जैसे कहते हैं पूर्ण से पूर्ण निकलता है फिर भी पूर्ण रहता है। तो इस भूयसे का भाव श्री प्रभुपाद ने लिखा है पूर्ण, और इस भूयसे से भाव है शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसमें, इस भूयसे से भगवान के शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। कौन सी शक्ति, तब कहते हैं 3 पुरुष अवतारों की शक्ति का वर्णन करते हैं। भूयसे का मतलब है 3 पुरुष अवतार भगवान के। 3 पुरुष अवतार का मतलब कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और क्षीरो दक्षाय विष्णु, ये 3 भगवान के पुरुष अवतार हैं। तो भूयसे का मतलब भगवान के पुरुष अवतार जो पूर्ण भगवान का अंश है, उसमें भी पहली लाइन में सद उद्भव, सद उद्भव स्थान निरोध लीलया। सद उद्भव का मतलब सृष्टि करना, स्थान का मतलब उसको चलाना, और निरोध का मतलब उसका लय प्रलय करना। तो ये किसका काम है, बोला ये पहले वाले विष्णु का। पहला वाला विष्णु जो है वो अपने आप को 3 गुणों में, 3 गुणों के अवतार के रूप में प्रकट करता है। कौन 3 गुण अवतार हैं, सत्वगुण का स्वयं विष्णु, रजोगुण का ब्रह्मा जी और तमोगुण का शंकर जी। अपने आप को इन 3 में विभाजित करके 3 गुण अवतार बनकर और सृष्टि का ये लीला करते हैं। कैसी, उत्पत्ति की और पालन की और संहार की। और फिर दूसरी लाइन में 2 और पुरुष अवतारों का वर्णन किया, कि वो क्या करते हैं, ये तो ग्रहित, ये जो निरोध लीलया ग्रहित शक्ति तृतीयाय देही नाम, ग्रहित शक्ति लीलिया से लगेगा, जो वो सृष्टि लीला में उन तीनों गुणों को ग्रहण करते हैं, तो तीन गुण अवतार के रूप में। इसका एक अर्थ ये है, ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ये तीनों जो है इन गुणों से प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है, ये गुणों के अधिपति हैं, ये इन गुणों के द्वारा ये कार्य करते हैं, लेकिन ये तीनों शंकर जी तो परम वैष्णव है ही, भगवान विष्णु तो भगवान ही है, और ब्रह्मा जी भी भगवान के शुद्ध भक्तों में और एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उसके चालू करने वाले, तो ये अपने आप में सारे एक तो भगवान और दो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और तीनों गुण अवतार हैं। ये स्वयं गुण को, ये गुणों के प्रभाव में नहीं आते, ये गुणों के अधिपति हैं। अब दूसरे दो अवतार क्या करते हैं, पुरुष अवतार, बोला एक तो पूरे जगत की गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड का आत्मा बन जाता है, वो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, और क्षीरोदक्षाई देही नाम, वो सारे शरीरों में प्रवेश करता है, जैसे हमारे शरीर में परमात्मा होता है, ऐसे पूरे विश्व के, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड का जो परमात्मा है वो गर्भोदक्षाई विष्णु। तो तीनों पुरुष अवतारों की लीला को, सृष्टि करने वाले अवतारों को मैं प्रणाम करता हूं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इसमें दिखाते क्या है, भूयसे से कहते हैं भगवान की वैभव शक्ति सृष्टि लीला की, और शक्ति कैसी है, अनुपलक्षते, अनुपलक्षित का मतलब है उपलक्षित नहीं की जाती, इसका मतलब इनकंसीवेबल, अचिंत्य, अचिंत्य वर्तमाने, जो वर्ताव है भगवान का, जो जिस तरीके से ये सब में प्रवेश करते हैं, ये अनुपलक्षित वर्तमान, वर्तमाने के भाव ये है कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति को केवल भक्त समझ सकते हैं, जबकि ज्ञानी योगी ये पुरुष अवतारों के भाव को समझ नहीं सकते। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव है कि भक्त तो ये तीनों देख सकते हैं, लेकिन ज्ञानी योगियों को ये दिखाई नहीं देता। तो अब इस श्लोक के अंदर तीन पुरुष अवतार जो भूय से परिपूर्ण भगवान की सृष्टि के लिए हैं, पहले से तीन गुणों को ग्रहण करके तीन काम होते हैं, और दो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और हर एक जीव में प्रवेश करता है। अब ये भगवान एक है लेकिन तीन के रूप में प्रवेश हो गया, तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, ये जो ज्ञानियों और योगियों के समझ में आने की बात नहीं है, केवल भक्त इसको समझ सकते हैं। ये जो अंतिम दो शब्द है अनुपलक्षते वर्तमाने, इसका भाव है कि भगवान के ये सारे कार्य अचिंत्य है, लेकिन अचिंत्य होते भी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं कि उनको समझ में आ जाते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ सकता। इसलिए आप सवाय वैष्णव समाज के, वैष्णव समाज में भी बहुत कम लोग हैं कि पुरुष अवतार के विषय में जानते हैं, अथवा तीन विष्णु का वर्णन बाहर सामान्य लोगों को करो नहीं समझ में आएगा, लोगों की ये बुद्धि में आएगा नहीं। तो ये भगवान के सृष्टि क्रम के तीन पुरुष अवतारों को पहले प्रणाम किया है, ऐसे लगता है कि प्रश्न ही सृष्टि के विषय में है, जो सृष्टिकर्ता पुरुष अवतारों को पहले प्रणाम किया है। अब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं देखिए सुखदेव गोस्वामी जी, भूय नमः सद व्रजं सिद्धये असताम, भूय भूयो भूयो नमः सदवृद्धने चिदेयसताम् असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे विवस्थितानाम् अनुमर्ग्यताशुषे पुनः प्रणाम करते हैं। कहते हैं मैं एक बार, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम एक बार पुनः प्रणाम करते हैं, भूयो फिर भी प्रणाम करते हैं। किसको? ये जो शब्द है सद्वृजन छिद्दे, सद्वृजन छिद्दे का अर्थ है परित्राणाय साधु नाम। जैसे भगवत गीता में परित्राणाय साधु नाम है, यहाँ इस अर्थ का सद का मतलब भगवान के भक्त, वर्जने मतलब उनके जो कष्ट हैं, और छिद्दे का मतलब जो काट देते हैं, जो भक्तों के दुखों को हरण करते हैं। हाँ, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का जो परित्राण करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे भगवान हैं ये? बहुत बड़े अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, दया करके प्रकट होते हैं। ये जब सद भक्त कहे, इसका अर्थ है कि भगवान आप अवतार लेके धरती के ऊपर आते हैं, परित्राणाय साधु नाम। तो और असत्य, असत्य असत्य का मतलब जो भक्त नहीं है, उनका क्या करते हैं? असंभवाय, असंभवाय का मतलब उनके भी जो लंबी जिंदगी पाप करने के कारण कष्ट होना उनको भोगना पड़े, उनसे छुड़वा देते हैं। कैसे? कि उनको मार के। इसका मत अर्थ इसका ये है, परित्राणाय साधु ना विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों को नाश करते हैं। तो असुर राक्षस जो दूसरे हैं उनको ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा पाप करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, जैसे बाप कभी खुश हो के बच्चे को मिठाई लेके देता है और कभी नाराज हो के थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन दोनों काम जब पिता करता है तो बच्चे का हित ही सोचता है, बच्चे का कोई अहित नहीं करना चाहता है। ऐसे भगवान अगर असुरों का संहार करते हैं तो भी अपने बच्चे समझ के उनको अधिक बुराई करने से बचा देते हैं, और अगर भक्तों को करुणा करके रक्षा करते हैं। और इसको अगर कभी बहुत इसमें रसास्वादन कभी करना हो तो वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी को पढ़ के देखना। वैसे हमारी भागवत, इसके लिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भागवत बाद में लिखी गई है, इसके अंदर कुछ परिवर्तन आया होगा। तो अन्य स्थानों में है कि भागवत पुराण जिसमें वृत्त का चरित्र है, तो वृत्त का चरित्र, वृत्तासुर के चरित्र का वर्णन है, और वृत्तासुर की चतुर्श्लोक की भागवत में असल में जान है भागवत का। वहां वृत्तासुर असुर है, वो कहता है इंद्र को तुम जियोगे, राज करोगे, दुख भोगोगे, और मुझे मारो तो मैं जाके भगवान के चरणों में अथवा भगवान भक्तों की सेवा, भक्तों के संग जाके प्राप्त कर लो। कभी केवल वृत्तासुर चतुर्श्लोकी का रसास्वादन करना चाहिए। अपने छठे स्कंद में ये चार श्लोक ढूंढ के निकालें, देखिए कभी चार श्लोकी बड़े अच्छे हैं, अच्छे ऐसा भक्ति का अद्भुत निरूपण उसके अंदर है। तो असुर है भीष्म पितामह, अपनी स्तुति में कहते हैं हे विजय सखे, विजय अर्जुन का एक नाम है, अर्जुन के सखा, अर्जुन तो आपके पीछे बैठा था, उसने तो आपको नहीं देखा, हमने जो आपका दर्शन किया वो तो आपके भक्त अर्जुन को भी प्राप्त नहीं हुआ, और आपने ये जो नजर डाल के इस सारी कौरव सेना को देखा, इनके तो आपने वहां लिखा है आयु हर लिया, लेकिन विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने लिखा है आपने इनके सारे कर्म काट दिए और आपका दर्शन करते हुए ये मरे तो भी सदगति को प्राप्त कर गए। रामचंद्र युद्ध कांड में जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो गई तो आकाश में जब अग्नि परीक्षा सीता की हो रही थी तो आकाश में ब्रह्मा जी आए, शंकर आए, इंद्र आए, ऊपर दशरथ महाराज आए, तो उन्होंने कहा रामचंद्र आप साक्षात भगवान हो, केवल अवतार लेके मानव की लीला इसलिए कर रहे थे कि रावण को केवल मानव मार सकता था, आप अपनी प्रियसी सीता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं। और फिर इंद्र ने नीचे उतर के कहा हम देवता हैं, आए हैं तो वरदान तो कुछ मांग लीजिए। तो श्री रामचंद्र कहते हैं ये राक्षस तो मेरा दर्शन करते हुए मरे, इनका तो सदगति हो गई, लेकिन ये बेचारे वानर मेरे पीछे थे, ये जो असुरों ने मारे इनको जीवित कर दो। इंद्र ने अमृत की वर्षा की, वानर सब उठ के बैठ गए, बोला एक और वर मांग लो। बोला दूसरा वर ये है जहां ये मेरे वानर रहे वहां फलों के पेड़ों के अंदर फल हो और नदियों के अंदर जल हो, ये कहीं भूखे न मरे, ये एक काम आप कर लो। इंद्र बोला अच्छा इन बांदरों के लिए अब फलों में पेड़ों में फल नहीं है, बांदरों के लिए अब वृंदावन के वानर तो मोबाइल लेके जा रहे हैं, चश्मे ले जा रहे हैं। ये तो भगवान ने नहीं मांगा था इंद्र से। हरे कृष्ण। तो यहां है कि असुरों का संहार भी उनके ऊपर कृपा। ये सातवें स्कंद भागवत के आरंभ में परीक्षित महाराज एक संशय प्रकट कर रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं, वृत्तासुर को मरवा दिया और इंद्र को राज दिला दिया, जिला दिया, तो ऐसे लगता है कि भगवान असुरों को मारते हैं और देवताओं का पक्षपात करते हैं, तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप ही लगाने जैसा हो गया। ये बहुत बड़ा संशय परीक्षित महाराज ने जब प्रकट किया तो उसके उत्तर में सुखदेव महाराज ने तो तीनों गुणों के प्रभाव का वर्णन किया, लेकिन उसका साधारण उत्तर ये है, पहले तो भगवत गीता से देखेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से जो मुझे कहेगा मैं शत्रु हूं तो मैं शत्रु हो के बात करूंगा, कोई कहेगा मित्र है तो मित्र हो के बात करूंगा। इस सामान्य उदाहरण सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए ये बिजली जो है ये माइक से आवाज को बढ़ा रही है, पंखे से हवा को घुमा रही है, बिजली में लाइट दे रही है, इस प्रोजेक्टर से शब्दों को यहाँ कर रही है, एसी ठंडी हवा दे रहा है, हीटर गर्म दे रहा है, क्या इसमें बिजली का दोष है क्या? हाँ बिजली का दोष है इसमें, तो काय के लिए अलग अलग काम कर रही है, किसका दोष है? यंत्र का दोष है, जैसी मशीन है वैसा उसमें से काम निकल रहा है, बिजली वही है, हीटर में गर्मी दे रही है और एसी में ठंडा दे रही है, तो इसमें बिजली का दोष तो नहीं है ना, यंत्र का दोष है ना। ऐसे मानव के अंतःकरण के यंत्र के अनुकूल भगवान का व्यवहार होता है, जैसा हमारा अंतःकरण का यत्न वैसे यंत्र के अंतर से भेद दिखता है। पानी वही एक ही है, खेत में जाए तो करेला कड़वा हो जाएगा और आम मीठा हो जाएगा, नींबू खट्टा हो जाएगा, तो इसमें पानी का दोष है क्या? बीज का दोष है ना। तो जो स्वभाव से जब तमोगुण से ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर भगवान तो उनको कष्ट भोगना पड़ता है, जो सतोगुण में होता है उनका भगवान साथ देते हैं, तो गुणों के प्रभाव से भगवान जिस तरफ का भाव होता है उधर उनका। तो ये प्रश्न है कि यहां भगवान को प्रार्थना में ऐसे लग रहा है कि देव अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हो और अब भक्तों को अधिक दुख से बचाने के लिए उनका भी उद्धार कर देते हो, तो ये दो लाइनों में तो ये है, और फिर कहते हैं परमहंस जो है असल में आपको पुनशाम पुनः परमहंसाय आश्रमे विवस्थितम। भगवान को कौन जान सकता है, कहते हैं परमहंस ही केवल आपको जान सकते हैं। अब परमहंस में प्रभुपाद जी ने लिखा है, कुंती महारानी कहते हैं, कह रही हैं कि परमहंस आपको जान सकते हैं, भगवान आपका अवतार ही केवल भक्ति का उद्घाटन करने के लिए है। और यहाँ परमहंस में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है कि जैसे कोई पहले ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, फिर परमात्मा का करता है, फिर भगवान का करता है, ऐसे ही व्यक्ति पहले संन्यास में बाहुदक होता है, फिर कुटीचक होता है, फिर बाहुदक होता है, फिर परिवर्जक आचार्य होता है, और फिर परमहंस होता है। तो ये चार संन्यास का स्तर है। कुटीचक का मतलब अपने गांव में ही कुटिया बनाएगा, घर में रहेगा नहीं, भोजन घर से आएगा। फिर बाहुदक है, कहीं घूम के फिर आ जाएगा। परिवर्ज आचार्य क्या होगा, सब दुनिया भर में प्रचार, परमहंस हो गया। तो परमहंस जो है, फिर आगे प्रभुपाद तात्पर्य को आगे बढ़ाते कहते हैं, परमहंस की परिभाषा है जीव गोस्वामी कहते हैं, जो भक्ति करते हैं। इसका मतलब भगवान जो भक्ति करते हैं परमहंस। फिर यहाँ एक है विवस्थितम, विवस्थितम और अनुमृग्य दशुषे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है कि दो प्रकार के परमहंस होते हैं। एक परमहंस ज्ञान के मार्ग वाले भी होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्म आनंदी, और एक परमहंस भक्ति के मार्ग होते हैं, उनको बोलते हैं प्रेम आनंदी। तो एक ब्रह्म आनंदी और एक प्रेम आनंदी। अब ये दोनों व्यवस्थित हैं अपने अपने आश्रम में, परमहंस दोनों हैं। ब्रह्म आनंदी कौन है, बोला जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति का आश्रय लेता है ज्ञान के रास्ते में। तो ये कौन सी भक्ति है, बोला ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान का भक्ति के सहारे ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, उसको ब्रह्म आनंदी कहे। और जो शुद्ध भक्त है वो प्रेमानंदी है, उसको भगवान अपने धाम में, अपने गोलोक धाम में बुला लेते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो भक्तों के रक्षक हैं और अभक्तों का दुख निवारण करने के लिए उनका भी उद्धार कर लेते हैं, जो परमहंसों को अपने धाम में स्थान देते हैं और ब्रह्मानंदियों को ब्रह्म में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, और प्रेमानंदियों को अपने चरणों का सेवा देते हैं, प्रेम देते हैं। तो ये इस प्रार्थना में भगवान सबका भला करते हैं ऐसे दिखता है, जो जिस मार्ग से भी जा रहा है उसके अनुरूप उसको फल देते हैं, लेकिन करते दोनों का हित है। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सृष्टि लीला के अंदर जगह पर भगवद गीता का ही श्लोक ले लें 16वें अध्याय से, तो दिवाओ सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एवच। दो प्रकार की सृष्टि है, देवते देवता ही सृष्टि और असुरी सृष्टि। तो यहाँ जब सृष्टि का ही वर्णन करना है तो दोनों सृष्टि का वर्णन करना पड़ेगा। तीसरे स्कंद में आते आते हिरण्यकश्यप की सृष्टि का भी तो वर्णन करना पड़ेगा ना, कि हिरण्यकश्यप की सृष्टि कैसे हुई। तो ये असुरी सृष्टि हिरण्यकश्यप का वर्णन तो करना पड़ेगा, देवी सृष्टि के अंतर्गत वो स्वयंभू मनु का, शत्रुपा का वर्णन करेगा, कपिल का वर्णन, कपिल देव और देवहूति का वर्णन करेगा। तो दोनों के ऊपर भगवान आपका तो अनुग्रह ही है, दोनों के ऊपर ही आप अनुग्रह करते हैं। तो क्योंकि अभी तक सृष्टि लीला के अंतर्गत ये भाव ऐसे दूसरा आ रहा है, पहले सृष्टि करने वाले पुरुष अवतार का, फिर आप सृष्टि में तो सभी आते हैं, पहले से ही देव असुर आ रहे हैं, पहले एक बार नहीं है। ये संतुलन जब बिगड़ जाता है तो भगवान उसको स्थापित करने के लिए आते हैं। तो ये श्लोक में प्रार्थना सुखदेव महाराज की ये क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरे श्लोक में, अब प्रार्थना के तीसरा श्लोक 14वां इसका, एक शब्द इस श्लोक में हम नहीं बोल पाए थे, अखिल सत्व। जो पहले वाला श्लोक वापस ले लो, अखिल सत्व मूर्ति, ये श्लोक हम कर रहे हैं ना, यही है ना श्लोक। इसमें अखिल सत्व और खिल सत्व, खिल का मतलब अखिल परिपूर्ण सत्य, भगवान कैसे अखिल सत्व मूर्ति है। और मूर्ति शब्द को लेके प्रभुपाद ने प्रवचन में यहां जो किया है कि भगवान की मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है, वो कैसा है, अखिल सत्व परिपूर्ण सत्व का है, शुद्ध सत्व। हाँ, तो भगवान की मूर्ति कैसी है, अखिल सत्व। तो अखिल सत्व है, चाहे सताम हो चाहे असाताम हो, वो दोनों के ही सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार कर, सभी का वही है अखिल सत्व मूर्ति। तो एक खिल सत्व होता है जो आधा होता है, पूरा नहीं होता है, लेकिन भगवान अखिल सत्व मूर्ति है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में तो पूरा आगे लिखा है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, वो अखिल सत्व है, पूरे का पूरा सत्व है सच्चिदानंद विग्रह। और उसके श्री विग्रह से निकलने वाला जो तेज है, यस्य प्रभा, उसकी जो प्रभा है, उससे जो प्रकाश निकलता है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उस ब्रह्म ज्योति में जहां सृष्टि के समय महत तत्व आता है, वो जैसे एक बादल आ गया हो बड़े आकाश में, एक जगह थोड़ा बादल आ गया हो, ऐसे वो जगह महत तत्व जहां आ जाता है वहां सृष्टि होती है। वहां जो सृष्टि होती है, ये तो अखिल भगवान, अखिल मूर्ति, अखिल सत्व मूर्ति भगवान है। और उस अखिल सत्व भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ भक्तों की, जो रक्षा करते हैं, असुरों को दुख से बचाने के लिए उनका उद्धार करते हैं, और ब्रह्मानंदियों को ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, प्रेमानंदियों को अपने लोक में प्रेमा भक्ति देते हैं, ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये आइए एक श्लोक आगे बढ़ते हैं। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मोह कुयोगिना निरस्त साम्यास्तमेन राधसा स्वधामिने ब्रह्मणि रंशयते नमः। इस श्लोक में भगवान के वीर्य शक्ति और प्रेम दोनों का वर्णन है। और पहला जो भाग है उसमें तो सीधा है नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम। ऋषभाय सात्वतम का साधारण अर्थ है भक्तों के रक्षक। सात्वतम का मतलब भक्त और ऋषभ का मतलब रक्षक, अपने भक्तों के रक्षक। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के भाव को श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ऋषभ का मतलब वासुदेव और सात्वतम का मतलब यदुवंश। सो यदुवंश पति भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। वसुदेव जो यदुवंश में प्रकट हुए, क्योंकि आगे चल के ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को की जा रही है। आगे आते आते ये सब तीन पुरुष कहाँ से आते हैं, बोला कृष्ण से आते हैं। अवतार कहाँ से आते हैं, अंततो को पुरुष। तो यहाँ सात्वता ऋषभाय सात्वतम का अर्थ क्या हुआ, भक्तों के रक्षक, लेकिन विशेष रूप से विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने इसका भाव दिया है कि यदुवंशी श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वो भगवान? वो भगवान कैसे हैं? हाँ, विदुर काष्ठाय, विदुर काष्ठाय मुक्कु योगिनाम। विदुर, दूर का मतलब बहुत दूर, विदुर का मतलब उससे भी दूर, जो कभी भी नजदीक ना आ सके वो होगा विदुर। काष्ठाय का मतलब बहुत दूरी पे है। वो कौन है? वो कुयोगी है, वो योग्य नहीं है, कुयोगी है। कुयोगी को श्रीधर स्वामी ने लिखा है भक्ति रहित। जो भगवत भक्ति रहित कुयोगी है, जो भगवान की भक्ति से दूर है, उनको तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ऋषभाय सातवताम, और भक्तों को तो बहुत सरलता से मिलते हैं, और अभक्तों को कुयोगियों को तो कभी नहीं मिलते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इतने भक्तों को नजदीक हैं कि वासुदेव के पुत्र बन जाते हैं, यशोदा के लाला बन जाते हैं, और अर्जुन के सखा बन जाते हैं, मधुमंगल के मित्र बन जाते हैं, इतने निकट के संबंधी बन जाते हैं। तो ऐसे ऋषभाय सात्वतम का प्रभुपाद ने लिखा है सुधामा श्रीधामा मधुमंगल के मित्र है ये। ऐसे भगवान दयालु वृंदावन के अंदर भक्तों के संग, ये क्योंकि भगवान को ऋषभाय सात्वतम का मतलब श्री कृष्ण, भक्तों के लिए बहुत सुलभ है, लेकिन कुयोगियों के लिए दूर है। विदुर काष्ठा, बहुत दूर है, उनको हाथ नहीं आ सकते हैं। तो जो अब भक्तों के लिए, कुयोगियों के लिए बहुत दूर है, वो भक्तों के लिए बहुत निकट है। भक्तों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो भक्तों को सुलभ प्राप्त है। ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर लिखा है निरस्त साम्य, साम्य का मतलब उनकी बराबरी। निरस्त, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनके बराबर कोई नहीं है, तो फिर उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं न परतरम अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो निरस्त साम्य, उनके समान कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। निरस्त साम्याय अतिशयन राधसा, राधसा का अर्थ है उनका जो वैभव है, उनकी जो शक्ति है वो इतनी अपार है कि उनके समान और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो सरल अर्थ है राधसा का, जिसकी जिसका वैभव, जिसका जलवा, जिसका प्रभाव इतना अनंत है कि उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। स्वधामने, अपने धाम में ब्रह्मणे, वो धाम कैसा है? सच्चिदानंद धाम है। करते क्या है? रम सते प्रेम, रमण करते हैं, प्रेम करते हैं। इसमें दो शब्द लिखा है सीधा, राधसा का मतलब उनका वैभव और रमसे का मतलब प्रेम। वो वहां प्रेम की क्रीड़ा करते हैं। इसको वृंदावन के रसिक आचार्य लिखते हैं, और भक्त और विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने भी भाव दिया है, प्रभुपाद ने भी उसको उल्लेख किया है। इसका अर्थ ये है निरस्त साम्य हमारे राधा कृष्ण के समान, युगल के समान और कोई नहीं है आराध्य, जो अपने धाम ब्रज में मथुरा मंडल, प्रभुपाद ने लिखा है मथुरा मंडल में अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। और ये दिव्य लीलाएं भक्तों को तो सरलता से समझ में आ सकती हैं, और कुयोगी तो कभी इसको दूर दूर से भी समझ नहीं सकते, नजदीक आओ क्या, उनको दूर तक कभी दिखाई भी नहीं देती। तो इसका भाव ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से लिखा है। वैसे राधसा का अर्थ है उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, वो इतना महान है कि उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, जिसका कोई, जिसके समान कोई नहीं है भगवान। जिसके वैभव के समान कोई नहीं है, जो अपने धाम में अपने भक्तों से अति प्रेम करते हैं और जो कुभक्तों को तो निकट से नजर ही नहीं आते हैं, ऐसे भगवान यदुपति, ऐसे भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो अब वो दो सृष्टियों से आगे आके फिर भी पहली और दूसरी लाइन के अंदर वही भाव है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय, जो वही भाव है दोनों में, लेकिन उस भाव में विशेष ऋषभाय सात्वताम से यदुवंश का वर्णन करके आचार्यों ने सुखदेव गोस्वामी के भाव को भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में सीधे लिखा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को जो यदुवंश में प्रकट हुए उनको प्रणाम करता हूं। वो राधसा शब्द को देख के ब्रजवासी, ब्रज के रसिकों को राधा का भाव आ जाता है कि राधा कृष्ण उनके समान कोई और नहीं है। तो वैसे कभी कभी कहते हैं भागवत में राधा रानी का नाम लिखा नहीं है, और कुछ महात्मा कहते हैं ये सीधा राधा दिख रहा है सामने, राधा तो दिख रहा है, अब इसका अर्थ कुछ भी दिख रहा हो लेकिन राधा तो दिख ही रहा है कि नहीं लिखा है, राधसा सराधा सराधा, मतलब वो जो पद छेद करते हैं सराधा मतलब राधा के संग, सराधा राधसा राधा के संग जो अपने धाम ब्रज में विहार करते हैं वो भक्तों को तो सुलभ है लेकिन अभक्तों का कुयोगियों को तो वो हाथ आ नहीं सकते हैं। सो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में विशेष रूप से ये गोलोक वृंदावन के नाम लिखा है, इन भक्तों का सारों का नाम लिखा है, भगवान तो भगवान के स्वधाम के लिए फिर प्रभुपाद का तात्पर्य धाम के ऊपर है कि स्वधाम नहीं ब्रह्मणे, तो अपने धाम में वो धाम कैसा है, पहला तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता से भगवान का धाम न तद भाष्यते सूर्य, फिर लिखते हैं कि भगवान अपने धाम में हैं, भगवान बहुत बड़े सुंदर हैं, बड़े आनंदमय भगवान का जीवन है और भगवान की लीलाएं हैं, उस धाम में कुयोगी तो भक्त जाए, बगैर भक्ति के तो कोई जा ही नहीं सकता है, तो अपने धाम में ये लीला करते हैं, सब जगह लीला नहीं करते, तो पहली लीला कौन सी की बात हो गई, सृष्टि लीला की बात हो गई, वो धाम में नहीं हो रही है, वो इस लोक में हो रही है, तो ये लीला इस लोक में हो रही है, तो पहले लौकिक लीला सृष्टि लीला से अब आ गए धाम की लीला पे ऊपर, और वहां रंसते शब्द का मतलब है रमण करना, रमण करना का मतलब राधा रमण हो गया, रमन रमन सते रंसते, रंसते का जो जो शब्द अर्थ लिखा है हमारे श्री प्रभुपाद ने शब्द अर्थ लिखा है रमसेता रंसते इंजॉयस, ये प्रेम का वाचक है, रमण रमण करना, रमण करना जो शब्द है रमण करना उसका मतलब ऐसा खेलना जिसमें सब कुछ खाना पीला भूल जाए, तो भगवान के ये दिव्य लीलाओं का वर्णन है। अब ये श्लोक आता है, ये श्लोक तो असल में भक्तों का प्राण है, आइए श्लोक को पढ़ते हैं। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यशार्वणम यद अहरणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषाम् तस्मै सुभर्दे शर्वसे नमो नमः। अब तो अब कुयोगियों को प्राप्त नहीं होता है, सुयोगियों को तो मिल जाता है, तो भाई कोई रास्ता तो होना चाहिए कि लोगों के जो कलमश है वो नाश कैसे हो, वो लोग कैसे तत्काल भगवान को समझने के लिए कैसे भगवान को प्रणाम करते हैं। यद कीर्तनम, वैसे यद एक शब्द बहुवचन नहीं है, एक वचन में है। एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले, इसका ऐसा लिया जाए, यद कीर्तनम अगर कोई भगवान का कीर्तन करे, यद स्मरणम उसका कोई स्मरण करे। स्मरण का आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। उनके स्मरण की परिभाषा क्या है? कीर्तन की परिभाषा है भगवान के गुणगान करना। और कीर्तन कितने होता है? नाम कीर्तन हरे कृष्णा, भगवान के गुण का कीर्तन। गुण का कीर्तन कैसे करेंगे? पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसम पतित प्रभु न पाई बेया। ये गुण कीर्तन हो गया ना, ये भगवान के पतित पावन भाव का लीला का कीर्तन, लीला का कीर्तन होता है। हाँ, भगवान ने प्रथम माखन चोरी, कृष्ण ने पहले माखन चोरी किया, ये बहुत सुंदर गाए हैं कवियों ने भगवान के लीला के कीर्तन। तो गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, लीला का कीर्तन, धाम का कीर्तन। आपका धाम वृंदावन, तद धाम वृंदावनम, कैसा है वृंदावन? तो वृंदावन की महिमा का कीर्तन। तो कीर्तन के चार कीर्तन तो हमको सामान्य, हमको अपने शास्त्रों में अपने आचार्यों के मिलेंगे। नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, धाम कीर्तन। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत का प्रवचन पाठन पठन भी कीर्तन है और भगवत गीता भी कीर्तन है। ये इसी श्लोक में लिखा कीर्तन का मतलब, भाई कीर्तन आचार्य कैसे सुखदेव गोस्वामी हो गए? भागवत ही तो सुनाया। तो ये भागवत का पढ़ना भी अपने आप में कीर्तन है। तो ये सारे कीर्तन, हम तो नाम कीर्तन करते हैं प्रायः, कुछ महात्मा लोग हैं वो लीला स्मरण करते हैं। सारी अभी कीर्तन की बात कर रहे थे। यद कीर्तनम यद स्मरणम, स्मरण का मतलब क्या है? तो पहले सुनेंगे, स्मरण का मतलब है याद करना, सामान्य शब्द ये है याद करना। आपको मालूम है इस माला को संस्कृत में सुमरणी कहते हैं। ये सुमरणी है जिसके ऊपर भगवान का स्मरण किया जाता है, वो कीर्तन हो गया। ये सुमरण है, हमारा रोज का जप है। असल में ये जप सुमरण में आता है, इसका नाम ही सुमरणी है। लेकिन सुमरण की इसलिए हमने जप के लिए एक बात के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो क्या है? ध्यान से जप करो, इसी को सुनो, इसके अलावा और कोई भी विचार नहीं आए, कहते हैं ना। तो स्मरणम का अर्थ है सवाय अपने इष्ट के और किसी की स्फूर्ति हो ही नहीं। स्मरण की परिभाषा है कि जैसे हमारे कृष्ण भक्ति में कृष्ण के गुण रूप लीला धाम के अलावा और चीजों का विचार जीवन में आए ही नहीं, उसको स्मरण कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज को स्मरण का आचार्य क्यों कहते? उनको सब जगह कृष्ण दिख रहा था, पर उसको अब ये तो कहाँ है? सब जगह है, यही तो कहा ना हिरण्याकश्यप को कि सब जगह भगवान, कहाँ है तेरा विष्णु? बोला सब जगह है। अब सब जगह है तो क्या इस खंभे में है क्या? तो उस वक्त प्रहलाद को तो उस खंभे में दिख रहा था, उसको उस खंभे के अंदर भी भगवान दिख रहा था। माने आचार्य तो कहते हैं उस वक्त भगवान इतने सावधान हो गए कि हिरण्याकश्यप की उंगली को देख रहे थे कि ये उंगली कहां रखेगा, वहां से मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी उंगली, उसको उस वक्त उनका ध्यान हिरण्याकश्यप की उंगली के ऊपर था कि ये जहां रखे वहां से ही प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त को तो मैं दिख रहा हूं सब जगह, और वहां से प्रकट नहीं हुआ तो सत्य कैसे होगा। तो स्मरण ऐसा हो जो कैसी भी परिस्थिति में हो। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि देखो वो पाकिस्तान के युद्ध में बम फेंक रहे हैं, मैं सोचूं, मैं समझूंगा कि ये बम के रूप में कृष्ण आ रहे हैं। ये स्मरण कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं उस बम को भी कृष्ण इस रूप में आ रहे हैं ऐसे देखूंगा। तो कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भगवान दिख जाए, ये स्मरण की बहुत ऊपर की स्थिति है। साधन वाला समय, हम तो साधन वाले स्मरण में, ये जो जप है हमारा साधन है स्मरण। फिर एक साध्य स्टेज, जब साधन से साधे स्तर के ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये स्मरण ऐसा होगा, कोई भी चीज दिखेगी तो भगवान याद आएगा, कोई भी चीज दिखेगी तो भगवान याद आए। वो समुन्द्र दिखता है तो चेतन महाप्रभु को कृष्ण दिखता है, उसके अंदर कूद पड़ते हैं, अरे ये तो नीले रंग का ये पेड़ तो बहुत सुंदर जो मेरे को कृष्ण दिख रहा है, हाँ कदम का पेड़ है तो इसको आलिंगन कर ले। तो ये सुमृति जो है, ये सुमरण की अवस्था जीवन में आ जाए कि कोई भी चीज कहीं भी कुछ देखें तो उस वक्त भगवान की उसके अंदर रूप लीला गुण का कोई ना कोई स्मरण आ जाए, कुछ भी चीज ऐसे देखने से, कहीं भी दुनिया के अंदर कैसी भी परिस्थिति हो उसको इसको कहते हैं सारी भौतिक चीजों को भगवान से कैसे जोड़ना है। कोई भी चीज भगवान से जोड़ी जा सकती है स्मरण में, कहीं भी हम भगवान किसी चीज को ही भगवान से जोड़, लेकिन कुछ लोग जो है विशेष रूप से लीला स्मरण करते हैं, अष्टकालीन लीला स्मरण, तीन तीन घंटे भगवान राधा कृष्ण की लीला कहाँ कहाँ होती है, इसको लीला स्मरण कहते हैं। तो ये स्मरण जो है ये परंपराओं गत आ रहे हैं। कविराज गोस्वामी लिखा है गोविंद लीला कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का भी स्मरण है अपनी जगह पे। तो कीर्तन के चार प्रकार हो गए और स्मरण की भी अवस्थाएं हो गई। कीर्तन भी अपने आप में साधन कीर्तन, साधन का कीर्तन है, और फिर एक साध्य कीर्तन हो जाता है, उसमें कीर्तन बंद ही नहीं होता है, सततम कीर्तन यंतो माम, वो सदा कीर्तन करते रहते हैं, उनके कीर्तन में कभी बाधा। अब हरिदास ठाकुर 22 घंटा रोज जप करते थे और थकते नहीं थे, हम तो दो घंटे में सब काम कर लेते हैं, हम 22 घंटे में बाकी काम करते हैं, 2 घंटा जप नहीं होता। तो वो क्यों, जब साधन अवस्था में भार लगता है, कीर्तन हो या स्मरण हो, साधन अवस्था में भार लगता है और साध्य अवस्था में रस उसमें आने लगता है, वो इतना रसमय हो जाता है कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती। कभी कभी भागवत पढ़ते पढ़ते आप पढ़ना शुरू कर दो, एक समय के बाद उसमें रस ऐसा आएगा कि इसको बंद करने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ते जाओगे तो और पढ़ने के अंदर उसमें रस आने लगेगा। वो जब तक रस नहीं आता है तब तक भार लगता है। इसलिए नए आदमी को नींद नहीं आए तो उसको दे दो भगवद गीता, बोलो छठा अध्याय पढ़ो, 6 मिनट में सो जाएगा। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम, उनका दर्शन, अरे भगवान का दर्शन, इसके लिए जाओ मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन कर लो, केवल भगवान का दर्शन कर लो और किसी का फिर दर्शन करना नहीं। सुबह भगवान का दर्शन करने का मतलब मंगल पहले जीवन में उनको ही हृदय में बसा दो, सारा दिन में कहीं भी जाओ लेकिन उसकी स्मृति बनी रहे। तो ये दर्शन भगवान का, भगवान ने कृपा करके इस रूप में प्रकट होकर अपना दर्शन दे दिया है। तो ईक्षण का मतलब भगवान का दर्शन करना, तो इसमें विशेष रूप से श्री विग्रह का दर्शनम, यद श्रवणम, उन भगवान की कथा का श्रवण करना, और यहाँ श्रवण से विशेष रूप से गीता भागवत का श्रवण करना, यद श्रवणम यद वंदनम। अब ये क्या कर रहे हैं सुखदेव महाराज, क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। वंदना का मतलब प्रार्थना करना। वंदना के आचार्य कौन है भाई? अक्रूर जी। अक्रूर जी को आचार्य वंदना का क्यों कर दिया, उसमें क्या वंदना वो करते, क्या वंदना, अक्रूर जी को वंदना का आचार्य क्यों कहते हैं, वंदना वंदना का भाव क्या है? वैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हम जो कथा करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम ये करते हैं, ये हमारी वंदना है, इसको वंदना कहते हैं, प्रार्थना करना। जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं तब वंदना करनी चाहिए। भगवान के ईक्षणम का मतलब दर्शन करना, जब दर्शन करना जाएंगे तो नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, जब प्रणाम करेंगे तो साथ साथ में भगवान के कुछ गुण रूप लीलाओं की तो कीर्तन होता है और कुछ प्रार्थनाओं से उनकी वंदना होती है। तो जो भी भाव में श्लोक आए वो एक नेम बना लो, भगवान का दर्शन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए उनको, और रोज रोज प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए भाई? हाँ जी, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಸಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೋ ತಪ್ತ ಕಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ಜೊ ಭಿ ಹಮಾರ ಯ ಶ್ಲೋಕೋ ಸೇ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯ ಕುಚ ಅಪನಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ರೋಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯ ಕುಚ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಹಾಂ ರೋಜ್ ಜಾತೆ ಹೋ ತೋ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಕೆ ನಹೀ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯ ವಂದನಾ ಕ್ಯಾ ವಂದನಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯ ಕಾಮ ಕೋ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮುಕ್ತ ಸೇ ಹಮಕೋ ಮುಕ್ತ ಕರ ದೋ ಅಚ್ಛಾ ಹೃದಯ ಕೋ ಪವಿತ್ರ ಕರ ದೋ ಠೀಕ ಹೈ ಸಬ್ ಬಡೆ ಸೇ ಬಡೆ ಮಹಾತ್ಮಾಓ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇ ಏಕ ವಿಶೇಷ ಬಾತ್ ಹೋತಿ ಹೈ ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಆಪಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಂಗ ಮೇ ರಖನಾ ಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇ ಮೂಲ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಕೈಸಿ ಭಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಹೀ ಭಿ ಹಮಕೋ ಹಮಾರೇ ಕಿಸಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಾನಾ ಪಡೆ ಲೇಕಿನ ಆಪಕ್ಕೆ ಭಕ್ತೋಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸೇ ದೂರ ಮತ್ ಕರ್ನಾ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಸಂಘ ಮಿಲೇಗಾ ರಹೇಗಾ ತೋ ಆಪಕ್ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಬನಿ ರಹೇಗಿ ಆಪಕ್ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಬನಿ ರಹೇಗಿ ತೋ ಹಮಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಬನಿ ರಹೇಗಿ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಈ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೇ ಜಬ್ ಪೂಛಾ ಗ್ಯಾ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ದುರ್ಲಭ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಬೋಲಾ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಸಂಘ तो प्रार्थना करनी चाहिए। और समस्या ये है कि भक्तों के संग और भक्तों के साथ जो एक प्रेम का संबंध होता है वो स्थापित हो नहीं पा रहा है, अकेलापन लग रहा है। रह साथ रहे हैं लेकिन अकेलापन लग रहा है। तो जो रस भक्त, अब यहाँ गोस्वामी कैसे अकेले रह पाए, रोज घंटों 3 घंटा रोज बैठ के कथा कीर्तन करते थे, 3 घंटे चेतना चैतन्य में तो रोज सुनाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी और सारे गोस्वामी इकट्ठे होकर सुनते थे। नाना शास्त्र विचार विचारणी के निपुण हो, ये शास्त्रों का विचार करना, ये इनका कीर्तन स्मरण वंदन, ये जो प्रार्थनाएं कितनी लिखी है उन्होंने, तो ये प्रार्थना भक्तों के संग में और एक आत्मीयता भक्तों में आनी चाहिए। एक कि हम और महाप्रभु का तो सीधा वचन है, संग चालो हरि बोलो, संग चालो, एक दूसरे के साथ संग चलना है। तो प्रार्थना में हम इस कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के संग में ये जीवन महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की सेवा में प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति और भक्तों की सेवा में लगाए रहे हैं, ऐसा भाव प्रार्थना का रोज प्रकट। भाव एक तो हम कभी आप भक्तों का संग तो छोड़ना ही नहीं, तो ये वंदना रोज करनी चाहिए। करते 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 एक दिन ये प्रार्थना भगवान सुन लेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और तद शरणवा शरवणम, शरवणम का मतलब कथा कीर्तन सुनना, और अहरणम का मतलब पूजा करना, अहरणम ये सारे काम करने से क्या होगा, ये एक बार भी कर ले, वैसे तो करना नित्य चाहिए, इससे क्या हो गया, लोकस्य, लोकस्य का मतलब सामान्य कोई भी व्यक्ति हो, लोकस्य सत्यो तत्काल, अभी का अभी, बाद में नहीं, तत्काल। विधुनोति, धुनोति का मतलब धोना, ये आप कपड़े धोते हैं ना उसको धोना धुनोति कहते हैं, विधुनोति नहीं कहते। धोने का मतलब एक बार धोएंगे तो फिर मेला हो जाएगा, विधुनोति का मतलब है कि फिर कभी मेला नहीं होगा। और विशेष रूप से ऐसी धुलाई हो जाएगी कि फिर धुलाई करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं मल निर्मोचनम स्नानम, मन मल निर्मोचनम दिन स्नानम दिने दिने, जल स्नानम दिने दिने, भाई रोज स्नान करते हैं ना शरीर के मल को धोने के लिए। श्री का गीता, गीता गंगा क्या है, मल निर्मोचनम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीताम मसी स्नानम संसार मल नाशनम, सकृत एक बार गीता के अमृत में स्नान कर ले तो जन्म मृत्यु का मल नाश हो जाए, संसार मल नाश न। तो विधनोद जी का मतलब है ऐसी धुलाई कर देंगे ये कीर्तन हो, स्मरण हो, यक्षण हो, कि फिर वापस कभी भी कचरा आएगा ही नहीं, वो रास्ता ही बंद हो जाएगा उसका। विधनोति विशेष, विधनोति विशेष धुलाई हो जाएगी। और विधनोति क्या, कलमश कली कलमश नाशनम, जो कलमश है, कलमश कहाँ से आते हैं, पापों से आते हैं। और कब से पाप चल रहे हैं, जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं, जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप हो गए हैं, हो रहे हैं, वो सारे ऐसे नाश हो जाएंगे तत्काल कि फिर वापस उनके आने की संभावना ही नहीं है। ये काम ऐसे हैं। और फिर क्या होगा, तस्मयी, क्योंकि ये सब ऐसे सुंदर कार्य हैं ये भगवान आपके, इसलिए तस्मयी शुभद्रे, भद्रे का मतलब है ऑस्पिशियस, और शुभद्रे का मतलब सु उसके आगे लग गया एक विशेषण, शुभद्रे। और फिर है श्रवसे, श्रवसे मतलब श्रवण करना, उनका श्रवण इतना शुभ है, शुभ नहीं सुशुभ, सुभद्रे, भद्रे नहीं सुभद्रे, उनका श्रवण इतना मंगलमय है। किसका, जिसका कीर्तन जिसका कर रहे हैं, जिसका ऐसा, जिनका श्रवण इतना, जिसका श्रवण ही करना चाहिए उसको हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, इसको प्रभुपाद ने एक शब्द में लिखा है, सबलाइम फॉर्म। ये जो कीर्तन विशेष रूप से, सारे तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने कीर्तन के विषय में लिखा है, और उस कीर्तन में भी विशेष बल दिया है कि मत समझो कि भगवान अभी आपको सुलभ नहीं है। आज भी भगवान गीता भागवत के रूप में आपको 24 घंटा अवेलेबल है, अपने नाम के रूप में कृष्ण कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भागवत के रूप में, भगवत गीता के रूप में आज भी कृष्ण इतना ही सुलभ है हमारे पास। बस उसका कीर्तन वंदन श्रवण करने से तत्काल हमारे सारे कलमश नाश हो जाएंगे। और ये भगवान का श्रवण ही सुभद्र, ये भगवान सुभद्र है, इसका भाव ऐसा सुंदर है कि वहाँ अमंगल, तो वहाँ अमंगल की तो कोई ही आकांक्षा ही नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है अमंगल की। वो ऐसे सुभद्र हैं कि उसमें अमंगल हो ही नहीं सकता है, उनसे किसी का अमंगल हुआ ही नहीं है आज तक। ऐसे भगवान की कथा कीर्तन, ऐसे भगवान को, कैसे भगवान है, सुभद्रे नमो नमः, बार बार उनको नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रभुपाद ने सीधा लिखा है, श्री कृष्ण जिनका गुणगान करना, स्मरण करना, सुनना, प्रार्थना करना, दर्शन करना, पूजा करना, सब पाप धो देते हैं, ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा है, यह हम आज कथा को विराम देते हैं, कल फिर और 4 श्लोकों का आगे कथा को बढ़ाएंगे। 18 श्लोक तक नमस्कार है, और फिर है भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तो ये है नमस्कार, नमस्कार बहुत बड़ा शक्तिशाली भक्ति का अंग है। भगवान श्री कृष्ण इस सुखदेव महाराज की प्रार्थना के श्लोकों के माध्यम से हमारे हृदय में भी कृष्ण भक्तों के सेवकों के सेवक बन के और भगवान श्री कृष्ण की गुण रूप लीला महिमा का भागवत को अध्ययन करने की कृपा करें ऐसी भावना रख के चार दिन सुनते हैं कि ये प्रार्थना सुखदेव की हमारे हृदय में भी भागवत को श्रवण करने के लिए कुछ रति उत्पन्न हो, कुछ भाव हमारे हृदय में प्रकट हो। इस भावना के साथ आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद। सुखदेव गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की, धनराज श्रीमद् भागवत महापुराण की गाय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।